संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 3 सितंबर 2021 के बुलेटिन की सुर्खियां। अफगानिस्तान में उभर रहा है मानवीय संकट, यूएन एजेंसियां मदद में सक्रिय, विश्व से नजरें नहीं फेरने की अपील। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट पर नजर, इस पर वैक्सीन का असर कम होने की आशंका। विश्व भर में 5.5 करोड़ से अधिक लोग जी रहे हैं डिमेंशिया की अवस्था में जीवन, लगातार बढ़ रही है संख्या। और पिछले 50 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी हैं चरम मौसम की घटनाएं, निर्धन देशों पर ज्यादा असर। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने शुक्रवार को आगाह करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए और नाजुक हालात का सामना कर रहे अफगान लोगों द्वारा सीमा पार शरण मांगने के मद्देनजर अनिश्चितता की स्थिति में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट मंडराता नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट का सामना करने के प्रयासों के तहत धन इकट्ठा करने की खातिर 13 सितंबर को जिनेवा में एक सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने शुक्रवार को जारी एक वक्तव्य में कहा कि इस सम्मेलन के जरिए धन इकट्ठा करने के प्रयासों में तेजी की हिमायत की जाएगी ताकि मानवीय सहायता अभियान जारी रह सकें। साथ ही निर्बाध मानवीय सहायता जारी रखने देने की अपील भी की जाएगी ताकि जरूरतमंद अफगान लोगों को जरूरी सेवाएं हासिल होती रहें। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के प्रवक्ता बाबर बलोच ने कहा है कि वर्ष 2021 के दौरान ही लगभग 6 लाख अफगान लोग देश के भीतर ही विस्थापित हुए हैं, जिनमें 80% महिलाएं और बच्चे हैं। उन्होंने कहा,
Afghanistan has an internally displacement crisis that we have been trying to talk about. What we are emphasizing is that cannot be allowed to become a humanitarian catastrophe, and that's why we have been trying to.
बाबर बलोच कह रहे थे कि वास्तविकता यह है कि अफगानिस्तान के भीतर ही विस्थापन संकट पैदा हो गया है, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान व अफगान लोगों से इस समय ध्यान नहीं हटाया जा सकता। इस स्थिति को एक मानवीय त्रासदी नहीं बनने दिया जा सकता। UNHCR के प्रवक्ता बाबर बलोच के शब्द। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत वायु सेवा ने गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में जरूरतमंद लोगों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए उड़ानें फिर शुरू की जाएंगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा संचालित इन उड़ानों से 160 राहत संगठनों के कामकाज को जारी रखने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त कुछ स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी शुक्रवार को कहा कि तमाम देशों को उन अफगान पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को तत्काल सुरक्षा मुहैया करानी होगी जिन्हें अपनी जान का खतरा है और जिन्होंने अपनी सुरक्षा की खातिर विदेशों में पनाह मांगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट म्यू पर नजर रखी जा रही है, जिस पर वैक्सीन का असर कम होने की आशंका जताई गई है। COVID-19 संकट की पृष्ठभूमि में वैश्विक स्तर पर महामारियों के खतरों की बेहतर समीक्षा और उनसे निपटने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक नया केंद्र स्थापित किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने साप्ताहिक अपडेट में आगाह किया है कि कोरोना वायरस का म्यू नामक वेरिएंट कोलंबिया और इक्वाडोर में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस में ऐसे बदलाव देखे गए हैं जिनसे संकेत मिलता है कि इससे वैक्सीनों की कारगरता में कमी आ सकती है, मगर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। इस वर्ष मार्च महीने से यह कोरोना वायरस का 5वां प्रकार है जिसकी यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने निगरानी करने की बात कही है। COVID-19 से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष सितंबर महीने के अंत तक हर देश में सबसे निर्बल 10% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, मगर अफ्रीकी देशों में इस लक्ष्य को पूरा कर पाना कठिन नजर आ रहा है। UN महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक।
The World Health Organization said today 42 of Africa's 54 countries are set to miss the goal of vaccinating the world's most vulnerable 10% against COVID by the end of September.
UN प्रवक्ता बता रहे थे कि सितंबर महीने के अंत तक दुनिया के सबसे निर्बल समुदायों के 10% टीकाकरण के लक्ष्य को अफ्रीका के 54 में से 42 देश पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि सितंबर के अंत तक वैक्सीन की और खुराकों के अफ्रीकी देशों में पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच वैश्विक स्तर पर बीमारियों के खतरों की बेहतर समीक्षा और उनसे निपटने में देशों की मदद करने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक नए केंद्र को स्थापित किया गया है। इस केंद्र में होने वाले विश्लेषण की मदद से विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों के लिए दुनिया भर में महामारियों का पूर्वानुमान लगा पाना, उन्हें खोजना और महामारियों के जोखिमों की समीक्षा कर पाना संभव होगा।
संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 5.5 करोड़ से अधिक लोग मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया की अवस्था में जीवन जी रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ और जानकारी सुनिए प्रतिष्ठा जैन से।
गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट बताती है कि महज 1/4 सदस्य देशों के पास ही इस चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीतियां, रणनीतियां या समर्थन योजनाएं तैयार हैं। डिमेंशिया की अवस्था के लिए ऐसी अनेक प्रकार की बीमारियों व चोटों को वजह बताया गया है जिनसे मस्तिष्क पर असर पड़ता है, जैसे कि अल्जाइमर्स बीमारी या फिर स्ट्रोक। इससे याददाश्त व संज्ञानात्मक क्षमता और रोजमर्रा के जीवन में कामकाज करने की क्षमता पर असर पड़ता है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहनॉम गेब्रियसिस ने कहा, डिमेंशिया लाखों लोगों से उनकी स्मृतियों, स्वतंत्रता व गरिमा को छीन लेता है, मगर यह बाकी हम सब से भी उन लोगों को छीनता है जिन्हें हम जानते और प्यार करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 65 वर्ष से अधिक उम्र की 8% महिलाएं और 5% पुरुष डिमेंशिया की अवस्था के साथ रह रहे हैं। यह संख्या वर्ष 2030 तक 7.80 करोड़ और 2050 तक 13.90 करोड़ पहुंचने का अनुमान है।
पिछले 50 वर्षों में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं से विश्व भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ रही है, जिसका निर्धन देशों पर विषमतापूर्ण असर हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए UN कार्यालय UNDRR की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इन हालात के बावजूद बेहतर अग्रिम चेतावनी प्रणालियों की बदौलत मृतक संख्या कम करने में कामयाबी मिली है। बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं ने पिछले 50 वर्षों में आपदाओं की संख्या 5 गुना तक बढ़ा दी है। हालांकि बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा प्रबंधन की मदद से वर्ष 1970 से 2019 के बीच मृतक संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 1970 में मृतक संख्या 50,000 थी, जो कि 2010 के दशक में घटकर 20,000 से कम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि COVID-19 संकट काल में सामाजिक संरक्षा के दायरे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, मगर इसके बावजूद 4 अरब से अधिक लोगों को अब भी ये उपाय उपलब्ध नहीं है। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
UN श्रम एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 सोशल प्रोटेक्शन एट द क्रॉसरोड्स इन परस्यूट ऑफ अ बेटर फ्यूचर में हाल के समय में सामाजिक संरक्षा प्रणालियों में हुई प्रगति की वैश्विक स्तर पर समीक्षा और COVID-19 महामारी के असर का आकलन किया गया है। बताया गया है कि वैश्विक आबादी के महज 47% हिस्से को ही कम से कम एक सामाजिक संरक्षा लाभ उपलब्ध है। यूरोप और मध्य एशिया में संरक्षा उपायों की कवरेज सबसे अधिक है और वहां 84% आबादी को कम से कम एक लाभ हासिल है। अमेरिकी क्षेत्र में भी ये कवरेज वैश्विक औसत से अधिक है, जहां 64% को कम से कम एक लाभ प्राप्त है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ये आंकड़ा 44%, अरब देशों के लिए 40% और अफ्रीका के लिए 17% है। हर 4 बच्चों में से महज 1 बच्चे यानी 26% को ही सामाजिक संरक्षा लाभ मिलता है। गंभीर विकलांगता का शिकार हर 3 में से 1 यानी 33% व्यक्तियों को विकलांगता भत्ता ही मिल पाता है। बेरोजगारी भत्ते की कवरेज इससे भी कम बताई गई है और दुनिया भर में महज 18% बेरोजगारों को ही कारगर उपाय हासिल हैं।
तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत।